हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से यथारूप से भी श्लोक क्रमांक 30 अध्याय 2। इसमें वह भगवान उस ज्ञान का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूड करना, समाप्ति कर रहे हैं। मेरे फोन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको पढ़ना हो तो। जिसमें वह देह के लिए शोक करना और आत्मा के लिए शोक करना ये व्यर्थ है, इसके वो बता रहे। तो ये आखिरी श्लोक है उस प्रकरण में। इस पूरे अध्याय में बहुत सारी बातें आ रही हैं, तो ये जो श्लोक चल रहे थे उसमें मुख्य शिक्षा यही थी कि देह के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है और आत्मा के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। तो ये आखिरी श्लोक है। देहि नित्यम वध्यो योयम्, देहि नित्यम अवध्योयम्, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, न त्वं शोचितुमर्हसि। देही का मतलब आप समझ रहे हैं, जो देह को धारण किया है। नित्य मतलब है आत्मा जो देह को धारण की है वह नित्य है और अवध्य है, उसको मारा नहीं जा सकता। अयम मतलब इस देह को धारण करने वाला। सर्वस्य भारता, हर एक के। सर्वस्य मतलब जो भी देही है जो इस देह को धारण किया है वह अवध्य है और वह नित्य है। इसलिए तस्मात, इसलिए तुमको किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट है अर्थ। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। गीत अच्छा, शोक का कारण तो मुख्य बात है कि जब नुकसान समझें। तो जब आत्मा को मारा नहीं जा सकता और शरीर को भी मारा नहीं जा सकता क्योंकि तत्व वही रहते हैं, तो शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये बात बोल रहे हैं। गीता भूषण टीका, दुर्गे आत्मा के विषय में संक्षिप्त रूप से शिक्षा देकर भगवान विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि अर्जुन को आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए। लाइन स्पष्ट है, आत्मा का विषय मुश्किल होता है, फिर भी उसको संक्षिप्त में भगवान ने समझाया और उसका सारांश यही है कि हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं। जीव जो देही है वह नश्वर शरीरों में स्थिर होकर भी शाश्वत होता है और किसी भी समय उसका वध नहीं हो सकता है। तो इस कारण से जिस भी जीव को शरीर प्राप्त हुआ है उनके लिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए, जैसे भीष्म इत्यादि सभी। मुझे समझता नहीं, कुछ समझाने की जरूरत है, एकदम स्पष्ट है। तुमको आत्मा के लिए शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि वह शाश्वत है, और शरीर के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वभाव से ही वह नाशवान है। और हमने कल चर्चा कर ली थी कि घड़े के रूप में पृथ्वी आती है, पृथ्वी रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। सेम चीज, अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है, ये भी क्लियर है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भले ही उसका अपने गुरु से प्रेम है या भीष्म पितामह से प्रेम है, तो प्रेम से विमुख होने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो खाली ये बोल रहे हैं कि आपको अपने कर्तव्य पालन से विमुख नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आत्मा अनश्वर है, अनश्वर है। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है, अभी एक डॉक्टर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हम समय नहीं मिला इन माइथोलॉजियों पे रिसर्च करने के लिए या कुछ विषय पे जानकारी के लिए करने के लिए। तो मैंने इनको समझाया कि ये मिथ नहीं है, आप आत्मा हैं, ये मिथ नहीं है। मिथ मतलब समझते हैं एक भ्रांति या एक किंवदंती, झूठ। झूठ मूठ में कोई कहानी नहीं बोल दी जा रही है कि हम केवल आत्मा मात्र है, ये वास्तविकता है। आप उसको जानते नहीं, आगे की बात है। जैसे आपका जो मेडिकल फील्ड है उसको मैं नहीं जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिथ है। मिथ समझ रहे हैं ना, मतलब झूठ नहीं है। हाँ, मैं नहीं जानता उसका मतलब थोड़ा ना मिथ है। और सही बात है, हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि जो होम्योपैथी की दवाएं हैं या कोई भी दवा है वह कैसे कार्य करती है, तो उसका मतलब मिथ हो गया। उसी प्रकार से आप आत्मा के बारे में नहीं जानते हो, इसके लिए आप ये लेबल कैसे कर देते हो कि वो मिथ है। एक विज्ञान है, इसको आप अगर आध्यात्मिक, जैसे आप अपने कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो वे समझ में आता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक विज्ञान को भी आप टीचर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और ऑब्वियसली उसके लिए अभ्यास भी करना पड़ता है। तो ये एक प्रायः इस जगत में भ्रांति है कि लोग सोचते हैं कि जब आत्मा के बारे में बात की जा रही है तो किसी भूत प्रेत के बारे में बात की जाएगी। एक बार IIT में मुझे छोटा सा एक सेमिनार कुछ टॉक देनी थी 10 मिनट की, तो मैं आत्मा के बारे में बोलना चाह रहा था, तो लोग सोच रहे थे कि मैं भूत के बारे में बोलूंगा। वो मुझे जो टीचर था वो बोलता है कि हाँ अब ये जो है एक घोस्ट स्टोरी सुनाएंगे, मतलब उसको मजाक की वस्तु सोचते हैं, भूत की कहानियां होती है ना ऐसे सुनाएंगे। लेकिन आत्मा के विज्ञान के बारे में अगर आप पूछ बोले तो उसको लोग मजाक समझते, ये गलत है। और प्रभुपाद उसको समझा रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण का प्रमाण मान करके आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा, अपने को स्वीकार करना पड़ेगा बेसिकली। फिल्मों में भी आत्मा को दिखाएंगे तो वो है, दिखाएंगे किस प्रकार से सफेद रोशनी है, वो सफेद कपड़े पहन के, वही लड़की सफेद कपड़े पहन के घूम रही है इधर भूत की तरह, तो ये गलत चीज है। ये केवल आत्मा का विज्ञान को ठीक से ना समझ पाने के कारण ऐसा होता है। वो भी सही बात है, वह भी आत्मा है जिसके पास स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म देह में घूम रही है। अब जरूरी नहीं कि वो वाइट ही हो उसको, हाँ आत्मा केवल ड्रामा की तरह है, और अपने व्यक्तित्व को ये मानना है। देखिए आप लोग सोच सकते हैं, हम सब लोग सोच रखे हैं, तो हमने कई बार सुना, ये बताइए कितने लोग अपने आप को अपने अपने इस पहचान से अलग समझते हैं। हम आत्मा समझते हो आगे छोड़ दीजिए, कितना हम लोग इंग्लिश में कहेंगे रूटेड हैं, कितने गड़े हुए हैं अपने इस अस्तित्व में। हाँ, कितना अभिनिवेश है, कम से कम दिन में एक बार जरूर सोचना चाहिए। जब भी आप सोचेंगे मैं भगवत धाम जाऊंगा तो सोचेंगे इसी शरीर से जाऊंगा। सोचिए, मान लीजिए हम वहां पे मेढक हैं तो कैसे, मान लीजिए हमारा स्वरूप मेढक का है या पेड़ का है, कुछ भी है, तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उससे। कितना, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि कितना हम लोग रूटेड हैं, कितना जड़ में फंसे हुए हैं। तो कई बार सुनना जरूरी है इस बात, क्योंकि प्राय तो हम शरीर के स्तर पर ही कार्य करते रहते और अपना पराया चलता रहता है उसमें भी, देहात्म बुद्धि। ठीक है, दूसरी बात प्रभुपाद जी हमारा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि आत्मा का सृजन भौतिक अवयवों से नहीं हो सकता है, रसायनों से बना करके अब आत्मा को घोट घोट करके आत्मा का रचना नहीं कर सकते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, फिर भी युद्ध के समय हिंसा को निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब उसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। ये सब बातें चर्चा कर चुके हैं हम लोग, और उसको ही हम लोग आगे 31वें श्लोक में हम चर्चा करेंगे। यहां तक आप लोग समझ, मतलब मेरे ख्याल से फॉलो कर रहे हैं कि धर्म युद्ध में हिंसा को हिंसा नहीं कहा जाता है। अब उसको इलैबोरेट किया जाएगा 31 और 32 श्लोक में। भगवान यहां पे समझाएंगे, अभी जैसे हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या समझाएंगे। क्यों अपने स्वधर्म को अब नहीं त्यागना चाहिए, अब एक सूक्ष्म बात है जो आप लोगों को थोड़ी पकड़नी पड़ेगी। देखिए, जो व्यक्ति सन्निष्ठ है उसको बोला जाता है कि स्वधर्म को बिल्कुल मत त्यागो, लेकिन स्वधर्म को निष्काम कर्म की भावना, निष्काम भावना से करो। प्रायः वेदों में बोलते हैं कि आप इसको करोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्ति होगी, युद्ध में मर जाओगे, तो युद्ध में मर जाना एक प्रकार का त्याग है, तो उस त्याग को करो ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो वो व्यक्ति भौतिक इच्छा से रहित नहीं है, लेकिन उससे श्रेष्ठ क्या बोला जाएगा, सनिष्ठ भक्त को तुम युद्ध प्राप्त, युद्ध इसलिए करो ताकि तुम मुक्त मुक्त हो, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ो। तो जो सनिष्ठ भक्त हैं उनकी साधना क्या है, साधना है स्वधर्म का आचरण निष्काम भावना से। बहुत तेज है किसान, हाँ थोड़ा सा बेस कम कर सकते हैं, उसका थोड़ा आवाज कम कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी ठीक है, थोड़ा सा आवाज अभी ठीक है। हाँ, तो यानी कि हमने क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, ये बात समझ में आ रही है, सब लोग अपना माइंड ऑफ कर दिए हैं, ऑफ कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान सनिष्ठों के बारे में बताएंगे, उससे पहले ये बता रहे हैं कि अगर सकाम कर्म भी करते हो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो भी स्वर्ग की प्राप्ति करते हो, अगर तुम युद्ध करते हो एकदम सकाम इच्छा से भी, तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर यहां से वो डेवलप कर रहे हैं कि स्वधर्म पालन करने से फायदा क्या होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वधर्म पालन करना एक सनिष्ठ भक्त के लिए साधना है। तो भगवान ऐसे डेवलप कर रहे हैं 31 और 32 श्लोक में कि स्वधर्म तुम अगर सकाम भावना से भी करते हो, भौतिक इच्छा से भी करते हो, तो भी तुम्हारा फायदा होगा। और अगर तुम निष्काम भावना से करोगे तो कितना फायदा, जैसे हम लोग भक्ति में बोलते हैं ना, अरे भाई तुम कैसे भी भौतिक इच्छा से भी भगवान कृष्ण की सेवा करो बहुत अच्छा है, लेकिन निष्काम से करोगे तो प्रेम प्राप्ति होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब क्योंकि कोई व्यक्ति अगर भक्ति के लिए तुरंत रेडी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मोत्थान पे कार्य नहीं करेगा। अभी भगवान जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं क्षत्रिय धर्म को, वह इसलिए कर रहे हैं जिससे स्वधर्म का जो सिद्धांत है वह स्थापित हो। प्रभुपाद जी भी इसको तात्पर्य में समझाएंगे। आत्मोन्नति तब शुरू होती है जब व्यक्ति वर्णाश्रम को पालन करना शुरू करता है। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम सब लोगों को वर्णाश्रम पालन करना, वो अधिकार के अनुसार है। जो व्यक्ति भक्ति में अधिकार है उसको उसको वर्णाश्रम में घुसने की, हाँ श्रद्धा, श्रद्धा वही मतलब, श्रद्धा अधिकार के अनुसार होती। तो जिस व्यक्ति की ये श्रद्धा है कि भाई ये वर्णाश्रम ही पाकर करके करूंगा, तो वर्णाश्रम को स्थापित भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। कट टफ लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं? अभी आप जब श्लोक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
स्वधर्म की बात है तो जैसे हम लोग यहाँ पे आश्रम में ब्रह्मचारी में,
हाँ,
तो सभी भक्तों का जैसे स्वभाव अलग अलग होता है,
ठीक है।
जैसे कुछ लोग रहते हैं जो कि उनको इंटरेस्ट रहता है प्रीचिंग में, कुछ लोग मतलब फंड राइजिंग में रहते हैं, कुछ लोग को डीटी में है, कुछ हाँ, लोग को क्लीनिंग में है,
हाँ।
तो क्या अगर उसको ही अगर लक्ष्य बनाकर और भगवान और गुरु के प्रसन्नता के लिए, तो वही स्वधर्म हो सकता है?
देखिए ये अलग आएगा अभी आगे, अच्छा प्रश्न है। देखिए जो भक्त परिनिष्ठ है वह वर्णाश्रम का बाह्य रूप से पालन करते हैं, लेकिन उनका साधन भक्ति होता है। और अगर आप ब्रह्मचारियों की बात करें तो ब्रह्मचारियों के लिए तो इस अगर इस्कॉन के बारे में बात करें या भक्ति के बारे में बात करें तो केवल भक्ति ही है। फंड रेजिंग भी किस लिए कर रहे हैं? ताकि मंदिर की स्थापना हो, ऐसा कुछ से हो, तो वो भक्ति से बिल्कुल भी अलग नहीं। लेकिन फिर भी स्वरूप सिद्धा भक्ति में हमको लगना चाहिए। अगर हम केवल फंड रेजिंग करते हैं और श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तो हम फिर फंड रेजिंग केवल फंड रेजिंग के लिए करेंगे। स्वाध्याय एक धर्म बताया गया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्वाध्याय में भी अब हम लोग वैदिक चीजों को नहीं पढ़ते ज्यादा, हम जो भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाली चीजें, बस भगवत गीता, भागवत, जो भगवान की भक्ति को हम आगे बढ़ाए, ये चीज पे हम फोकस करते हैं। अगर आप स्वाध्याय ले लें तो स्वाध्याय का तो कितना मतलब विस्तार है ना। आप उपनिषद पढ़ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी पढ़ते थे ब्रह्मचारी, लेकिन अब वो छोड़ करके केवल भगवत गीता भागवत में लेके आएंगे। तो मुख्य उद्देश्य तो देखिए भगवद गीता का ये है कि व्यक्ति भक्ति करे, लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं वर्णाश्रम की, तो यह भी बहुत सारे लोगों के लिए आवश्यक है, उपयोगी है, जिनका केवल भक्ति पर अधिकार नहीं है कि केवल भक्ति ही करें, तो उससे भी प्रगति होती है। लेकिन एक धीरे धीरे आप ये भी समझेंगे दूसरी दृष्टि से कि वर्णाश्रम के नियमों को एकदम ठीक ठीक पालन करना कलयुग में संभव भी नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आप सारे नियम अगर लिस्ट करना चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन हाँ, एक जरूर बात है कि ये सिद्धांत हम जो भगवान सिखाएंगे आगे जाकर के, निष्काम भावना से करना चाहिए, ये एनकरेज किया जाता है। ये आगे खैर अभी सब डिस्कशन आगे आएगा तो हम उसको जैसे आएगा करते जाएंगे। इस श्लोक में भगवान स्वधर्म को स्थापित कर रहे हैं कि अगर तुम स्वधर्म का आचरण भौतिक इच्छा से भी करते हो तो भी तुमको लाभ प्राप्त होगा, ये बात इस श्लोक में समझाई जाएगी और 32वें श्लोक में। तो इसलिए तुम्हें स्वधर्म को नहीं त्यागना चाहिए। फिर से समझिए, अभी तक भगवान ने बताया आत्मज्ञान के द्वारा तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? स्वधर्म का पालन तुम भौतिक इच्छा से करोगे तो भी तुमको लाभ है ना, स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी, तो ये पॉइंट बोला जा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि भगवद गीता एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है और काफी उसमें विषय आपस में रिलेटेड भी हैं, ठीक है। 31वें श्लोक को देखेंगे। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म मतलब अपने धर्म को भी निसंदेह अवेक्षा विचार करके ना कभी विकम्पितुम मतलब संकोच करने के लिए, अर्हसी तुम योग्य हो, अनुवाद पढ़ लेते सीधे, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। आप इतना समझ गए इस लाइन से कि भगवान अब एक सनिष्ठ भक्त की तरह अर्जुन को ट्रीट करते हुए उनको ये बोल रहे हैं कि स्वधर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब देखिए भगवान खींच के कहां लेके जाएंगे, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो अब इस चीज को मैं थोड़ा आपका ध्यान देना दिलवाना चाहता हूं। 6 अध्याय जो है वह है सनिष्ठों के लिए। पहले वह निष्काम कर्म को योग करेंगे, फिर वह ध्यान योग करेंगे, फिर अष्टांग योग करेंगे, फिर वह भक्ति पे आएंगे। 6 अध्याय के आखिरी में भगवान ने बोल दिया ना कि भक्ति श्रेष्ठ है। 7 और 12 जो है वह शुद्ध भक्तों के लिए कि भक्ति ही करना है। तो इस प्रकार से परिनिष्ठ और आखिरी के अध्याय में फिर से निरपेक्षों के बारे में बात करेंगे। 18वें अध्याय जो आखिरी आप देखेंगे उसमें तीनों के बारे में बात हो रही थी, अगर आपको याद हो। सनिष्ठ वो उपसंहार टाइप का है, सनिष्ठ के बारे में है, परिनिष्ठ के बारे में है, निरपेक्ष के बारे में, तो उसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके। लेकिन मुख्य जो है, जो भक्ति का सार है, वो भक्ति का जो सार प्रस्तुत किया है वो 7 और 12 में, 7 से 12 के बीच में किया गया कि भक्ति ही करना है। लेकिन वो व्यक्ति भक्ति योग तक आया कैसे, 6 अध्याय तक आया। तो जो नहीं स्वीकार कर सकता वह क्रमिक विकास को स्वीकार करे, इसको जान लेना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कलयुग में प्रैक्टिकल नहीं है, अष्टांग योग करना किसके लिए संभव है, संभव ही नहीं। हाँ, ये समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति भक्ति में श्रद्धा रखा है उसने पिछले जन्मों में ही सब सारी तपस्याएं खूब कर ली, अन्यथा श्रद्धा नहीं होती उस व्यक्ति। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मतलब युद्ध करने से, क्षत्रिय के लिए युद्ध करने से, धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर कोई कार्य नहीं। गीता भूषण टीका। अच्छा, एक सूक्ष्म चीज देखिए, अब बहुत सारी सूक्ष्म चीज आएंगी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ श्रेय की प्राप्ति जरूर होती है। श्रेय मतलब आगे उससे मेरा लाभ होगा। अब शास्त्र उसके अधिकार के अनुसार कि क्या वह श्रेय सोचता है उसको उपदेश दे रहे हैं। जैसे भगवान यहां बोल रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये श्रेय होगा, लेकिन ये परम श्रेय नहीं है। इस श्लोक में ऐसा बोल रहे हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो ये परम श्रेय नहीं है, लेकिन एक अधिकारी व्यक्ति के लिए श्रेय है, ताकि वे कम से कम वैदिक नियमों का पालन करके धीरे धीरे प्रगति करें। मुझे लग रहा है कि चीजें थोड़ी थोड़ी टफ हो रही हो सकती हैं, लेकिन अधिकारी मतलब जिसका चेतना का लेवल कैसा है। कुछ लोग बहुत इच्छुक होते हैं स्वर्ग जाने के लिए, तो उनके लिए फिर उसी प्रकार की बातें बोली जाती, नहीं तो क्यों अन्य अन्य प्रकार के शास्त्र क्यों वेदव्यास जी ने लिखे, केवल भागवत में दे देते थे। थोड़ा सा सोचेंगे तो आप समझ में आने लग जाएगा मैं क्या यहां पे बातें बोली जा रही हूं। सभी लोगों को आत्मज्ञान देकर जो परमात्मा के ज्ञान के लिए आवश्यक है, भगवान अब सनिष्ठ भक्तों के लिए उपदेश करेंगे। सनिष्ठ अर्थात जो क्रमिक आध्यात्मिक विकास के पाठ नहीं होना चाहिए, पथ पर होते हैं, मतलब वर्णाश्रम का पालन करेंगे और वह निष्काम कर्म से करेंगे। देखिए, जब भी आप किसी को आत्मज्ञान देते हैं या आत्मा के बारे में बात करते हैं, तो अभी भी जानते हो कि बात करने से केवल काम नहीं चलने वाला, हमें कोई ऐसी साधन होना चाहिए जिसके हम उसके बारे में हम उसको प्राप्त कर सकें। जैसे मैं कहूं कि भाई आपके पास बहुत धन है, आपके पिताजी ने आपके लिए बहुत धन रखा है, ये अच्छी बात है, अच्छा लग रहा सुनने में, लेकिन ये भी तो तरीका बताओ कि प्राप्त कैसे होगा, नहीं तो जान लेने से कैसे काम चलेगा। तो ये आत्मज्ञान आत्मानुभूति हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगी, और इसलिए जो सनिष्ठ भक्त है, जिसको वर्णाश्रम जो एकदम कह सकते हैं भोगों में लिप्त है, बहुत अधिकारी नहीं है, भक्ति नहीं कर सकता, तो उसके लिए भगवान अब स्वधर्म की स्थापना कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे वे क्रमशः विकास करके आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सके। मेक सेंस टू यू? जिसमें अच्छा हाँ क्या बात कर रहा था मैं, आवश्यक है अब सनिष्ठ भक्तों के लिए उपदेश करेंगे जिसमें भौतिक इच्छाओं से रहित, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, जिसमें भौतिक इच्छाओं से रहित होकर कर्म किया जाता है अर्थात निष्काम कर्म, और जो हृदय को शुद्ध करके आत्मज्ञान को स्थापित कर देता है। तो अब ये थोड़ा समझिए इस लाइन को, सनिष्ठ भक्त स्वधर्म का वर्णाश्रम का पालन कैसे करता है, निष्काम भावना से। अब भगवान स्वधर्म की पोटेंसी को स्थापित करने के लिए कह रहे हैं कि स्वधर्म को अगले श्लोक लाइन में बोलेंगे कि तुम भौतिक इच्छा से भी करोगे तो स्वर्ग प्राप्ति कराएगा, समझे। भौतिक इच्छा से करोगे स्वर्ग प्राप्ति कराएगा, अगर निष्काम भावना से करोगे तो आत्मज्ञान देगा। तो ये शक्ति है स्वधर्म की, वर्णाश्रम धर्म की। इसको स्थापित करने के लिए भगवान इस आर्ग्यूमेंट को दे रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति तो करा ही देगा ना, श्रेय की प्राप्ति तो करेगी ना, होगी ना, अधोगति तो नहीं होगी ना, ये बात बोल रहे हैं। ये भगवान का हाईएस्ट टीचिंग नहीं है। जैसे अब बोला जाता है कैसे भी भक्ति करो, उस दिन महाराज बता रहे थे ना कि भक्ति कैसे भी की जाए अच्छा होता है, लेकिन महाराज ने बाद में क्या बोला, ये पराभक्ति नहीं है। तो दोनों बातें बोली जा रही है कि नहीं बोली जा रही। भक्ति बहुत प्रभावशाली है, आप कैसे भी करो लाभ होगा, तो किसी तरह भवलों को भक्ति में लाने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन वास्तविक रूप से भक्ति जैसे की जाए, जैसे आत्मा को सुख प्राप्त होगा, परम श्रेय प्राप्ति होगी, वो निष्काम भक्ति। तो उसी तरह से यहाँ पे स्वधर्म की स्थापना की जा रही, ठीक है। ओके एग्जैक्टली, हम एक बोलते हैं एक माला तो करो, अरे कैसे भी करो, सोते जागते बिना नहाए हाय कैसे भी करो। तो यह कि भाई नाम करना तो शुरू करे, क्योंकि देखिए स्वधर्म का बिल्कुल आचरण नहीं करेगा मतलब पशु, तो वहां से शुरू करे, कम से कम भूमिका बनेगी। यस, इस आत्मज्ञान में निष्काम कर्म के द्वारा स्थित होने के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने के लिए भगवान इन पहले दो श्लोकों को कह रहे हैं, जिसमें सकाम कर्मों के संपादन से किस प्रकार भौतिक फल मिलते हैं इसका वर्णन है। ये समझ में आ गया लाइन, कैसे स्वधर्म को क्षत्रिय ब्राह्मण इत्यादि कार्य को जब आदमी भौतिक इच्छा से भी करता है तो भी उसको लाभ होता है, यह स्थापित करने के द्वारा वह स्वधर्म में निष्ठा उत्पन्न कर रहे हैं। और कैसी निष्ठा, कैसा स्वधर्म, जो निष्काम रूप से स्थापित किया जाएगा, निष्काम भावना से किया जाएगा। टफ तो हो रहा है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब स्वधर्म आप सकाम इच्छा से करते हैं तो भी स्वर्ग प्राप्ति कराता है। तो स्वधर्म बढ़िया चीज है, ये कहना चाहते हैं स्वधर्म बढ़िया चीज है, आप अगर निष्काम से करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये फायदा, ये बात बोल रहे हैं। युद्ध का कर्तव्य एक क्षत्रिय के लिए सदा ही नियत होता है, जैसे यज्ञ एक नियत कर्म होता है। समझ रहे हैं, प्रेस्क्राइब्ड, ये करना ही है युद्ध तुमको। आगे बड़े बड़े अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट बोलेंगे कि देखो यज्ञ करके स्वर की प्राप्ति कब होती है, मरने के बाद। आज आपने यज्ञ किया, 20 साल जिए, फिर आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अगर आप युद्ध में मर गए तो स्वर्ग कब मिलेगा, तुरंत मिल जाएगा। ऐसे करके आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो आगे आएंगे। युद्ध में शत्रुओं का वध यज्ञ में पशुओं के वध के समान है और किसी भी पाप का कारण नहीं बनता है। दोनों पक्षों में हिंसा की जाती है, परंतु इसका उद्देश्य उन लोगों या उन शरीरों को स्वर्ग की प्राप्ति कराना होता है जब वे अपने हीन शरीरों और लोगों को त्याग देंगे। ये तो तुम स्पष्ट है, कोई शत्रु मरेगा तो ये स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, और ब्राह्मण के द्वारा जो कोई जानवर को मारते हैं तो वह भी स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। लेकिन हमें समझ में आना चाहिए कि कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है, ये भी बात हमें याद रखना चाहिए कि ब्राह्मण इतने शक्तिशाली नहीं है। इसे छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, महाराज बहुत अच्छा बताए थे। कह रहे थे कि एक बार एक राजा ने, सत्य घटना है, उसने कहा कि ब्राह्मणों का पतन हो गया है तो मैं ब्राह्मणों को चेक करता हूँ। सुना है आपने, बहुत अच्छी कथा है। तो उन्हें कहा सारे ब्राह्मणों को बुलाओ राज्य के। तो बोला देखो, ये पहले जमाने में अगस्त मुनि थे, तो उन्हें तो पूरा सागर पी लिया, तो कोई बहुत पानी का विशाल सरोवर था या कोई बड़ा विस्तार था, कि आप में से कोई ब्राह्मण अगर पक्का है तो उसे पी जाइए, तब तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे अब ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण बड़े चतुर था, एक उसने बोला कि भाई देखिए आप क्षत्रिय हैं और भगवान रामचंद्र भी एक क्षत्रिय थे, तो उन्होंने पानी के ऊपर पत्थर बहा दिया, तो आप इस सरोवर के ऊपर पत्थर डालिए कि तैर जाए। तो वो समझ गया, पर उसने क्षमा मांगा, कहता जैसे क्षत्रियों का पतन हुआ वैसे ब्राह्मण का भी पतन हुआ। अब हर ब्राह्मण अगस्त मुनि नहीं है, जैसे हर क्षत्रिय रामचंद्र भगवान नहीं है। देखिए यार, ये कहने करती था कि अब ये सब चीजें हैं, ये सत्य है, सारे कथन सत्य हैं, लेकिन अब ये सब एप्लीकेबल भी नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि इस समय जो भी युद्ध हो रहा है वो धर्म युद्ध हो रहा है, ये भी नहीं आप नहीं कह सकते, और धार्मिक तरीके से भी नहीं हो रहा। ऊपर से हवाजहाज से बम गिरा देना, हम लोग मान लो बसे बैठे क्लास कर रहे हैं, है ना, ऊपर से बम गिरा दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि धर्म युद्ध है वो, इजंट इट। आतताई बोले या कुछ भी बोले, लेकिन धर्म तो नहीं है। खैर, इसलिए हम लोग साथ में चलते हुए स्वधर्म में निष्ठा को हटा भी देंगे कि स्वधर्म पालन करना संभव नहीं वास्तविक रूप से। रूपा जी तात्पर्य में बोलते, भक्ति ही कर ले और पार हो जाए। इस संबंध में स्मृति का कथन है कि आहावेशो मिथो न्योन्यम जिघांसतो महिक्षता युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्य अपरांग मुखा। राजा विरोधी को मारने के इरादे से एक दूसरे से पूरी शक्ति से और बिना पीछे हटे लड़ते हुए स्वर्ग तक पहुंचते हैं। ये मनुस्मृति है। इसको आप समझ सकते हैं जैसे राणा सांगा हुए थे, राणा और कौन से थे, प्रताप, ये सब लोग जो है महाराणा प्रताप, ये सब जो है इसको पालन किया करते थे, वापस नहीं जाते थे। ये सारे श्लोक मैं समझता हूँ प्रभुपाद जी भी टीका में कोट कर रहे हैं, अभी आएंगे। ये हो गया किसके लिए, क्षत्रियों के लिए, कि क्षत्रिय अगर युद्ध करते हैं तो ये कोटेशन है, वो लोग स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सत्तम द्विजै संस्कृतः किल मंत्रैश्च तेपि स्वर्गम अवाप्नुवन्। अगर आपने प्रचार करना है तो ये श्लोक भी याद कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, किस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा पशु मारा जाता था तो मंत्र के प्रभाव से शुद्ध होकर के स्वर्ग प्राप्ति करता था। ब्राह्मणों द्वारा बलि में मारे जाने वाला जानवर मंत्रों से शुद्ध होकर स्वर्ग तक पहुंचते हैं। अब दिक्कत यह है कि आजकल जो ब्राह्मण है वही मंत्रों से शुद्ध नहीं होता, वही खैनी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो बेचारा वो क्या उच्चारण करेगा। अब मंत्र भी नहीं पता रहता है और उस मंत्र को बोलने की योग्यता भी नहीं है अगर वह खैनी खा रहा है या सिगरेट पी रहा है, तो ये सब सत्य है लेकिन योग्यता नहीं है अभी। इस प्रकार अपने स्वधर्म पर विचार करते हुए आपको उस स्वधर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस स्वधर्म का पालन अगर मैं भौतिक इच्छा से भी करूंगा तो मुझे श्रेय प्राप्त होगा, इसलिए तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, और इसमें तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा इसलिए भी घबराना नहीं चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि आप इस हत्या में कोई लाभ नहीं देखते हैं। कौन बोल रहा है ये? भगवान कृष्ण। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, आपने कहा कि आप इस हत्या में कोई लाभ नहीं देखते हैं क्योंकि यह मृत्यु के बाद लगातार नरक में रहने का कारण बनेगा, क्योंकि आप युद्ध द्वारा पाप करेंगे, लेकिन यह ऐसा नहीं है, यह केवल अज्ञानता से युद्ध करने के लिए लागू होता है। मतलब अगर व्यक्ति नहीं समझ रहा है कि यह युद्ध धर्म का है या नहीं है, अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर धर्म युद्ध कर रहा है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, एक चीज आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए तैयार रहता है तभी सोचेगा जब उसका कुछ फायदा है। जब बोल रहे हैं बड़ा सूक्ष्म बात है कि निष्काम कर्म करो तब क्या फायदा है, यस उसको मुक्त प्राप्ति होगी, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होगा, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई फायदा नहीं है। आगे भी ये सब बात ध्यान रखिएगा, जब बोला जाएगा कर्मणा वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, तो आप कहेंगे अरे फल की इच्छा नहीं है तो मैं काम क्यों करूं, बिना उद्देश्य के हम कोई कार्य नहीं करते। फल की इच्छा से रहित होकर काम करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो हमको वो फल चाहिए। समझ में आ रहा है? वो हमारा उद्देश्य है कार्य करने का, श्रेय की वो हमारा श्रेय है। तो ऐसा मत सोचिए कि बिना उद्देश्य के काम कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारा उत्साह ही नहीं रहेगा अगर कुछ हम कुछ कार्य कर रहे हैं, ऐसा कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा तो उत्साह क्या आएगा। लेकिन रिजल्ट भौतिक ना होकर के आध्यात्मिक उन्नति, यह रिजल्ट होना चाहिए। मेक सेंस टू यू? ये सारी चीजें आगे भी आएंगी, इसलिए हम उसको आपका ध्यान उधर आकृष्ट कर रहे हैं। धर्म के सिद्धांतों के अनुसार लड़ना श्रेयस्कर है। श्रेयस्कर मतलब आगे लाभ देने वाला है। युद्ध वास्तव में पृथ्वी पर विजय का द्वार है, ताकि आप नागरिकों की रक्षा करने और ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा करने के रूप में क्षत्रिय धर्म की संस्थापना कर सकें। अब यहां तक पूरी सकाम भावना ही, आप पृथ्वी पर राज्य करेंगे, आपकी प्रसिद्धि प्राप्त होगी, यही सी उद्देश्य से भी आप युद्ध करेंगे, आपके लिए लाभ है। पराशर भी कहते हैं, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्य आदि शितिम धर्मेण पालयेत। एक क्षत्रिय को हाथ में शस्त्र लेकर दंड देने के लिए, किसको? अपराधी को। ये अलग अलग लोगों के हिसाब से है। अपराधी को दंड देने के लिए शस्त्र रहना चाहिए हाथ में। प्रजा का पालन और विपक्ष की सेना पर विजय प्राप्त कर पृथ्वी पर धर्म पूर्वक राज्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये सारा कुछ एक स्वधर्म, क्षत्रिय को पालन किस लिए करना चाहिए? सकाम भावना से। ओके, आप कोई पढ़ेंगे? कौन हिंदी? आप अच्छा हिंदी पढ़ते हैं? यस, पढ़िए तात्पर्य।
सामाजिक व्यवस्था के चार वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है।
मतलब उत्तम शासन मतलब क्षत्रिय मतलब उत्तम शासन का मतलब क्या है? हाँ, ब्राह्मणों की रक्षा करना, गुरुओं की रक्षा करना, प्रजा का पालन करना, अपराधियों का दंड देना, एकदम स्पष्ट। यस।
और क्षत्रिय कहलाता है, क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना,
समझ में आया क्या मतलब है इसका? इस लाइन को अपने पढ़ा सक, क्या अर्थ है? जो हिंसा करके रक्षा करे, और बहुत बार हिंसा करके ही रक्षा होती है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारे महात्मा ही घूम रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उग्रवादी हैं, उनको गोली मार करके या उनके प्रति हिंसा करके ही समाज की व्यवस्था बन सकती है, तो ऐसे करना पड़ता है लोगों को। यस।
त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं।
आज भी मतलब जब प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा था, अब नहीं, अब तो अलाउड भी नहीं है। यस। और कर भी नहीं सकता कोई, नाम बहुत मुश्किल है।
क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है।
यस। तो अब मैं समझता हूँ, एक से हमारे पहले चर्चाओं में ये बात आई थी कि वो लोग जानवर को मारते हैं तो पाप लगता है कि नहीं लगता है, तो प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं किन जानवरों को मारते हो। तो प्रायः वह शेर इत्यादि को मारते हैं, और खरगोश मारने से क्षत्रिय नहीं होते वो। इस तरह से मैंने तो कभी सुना नहीं खरगोश मारते हो, ऐसा पता नहीं, यानी क्षत्रिय लोग नहीं मारते थे, जो एक्चुअल क्षत्रिय थे वो था ना, बोले मैंने आज तलवार से खरगोश मार के लाया, तो कोई मतलब नहीं ना। कभी कभी मैंने कुछ सुना नहीं, छोड़ दीजिए, मेरे शेर के बारे में प्रभात बोल रहे तो हम कह सकते हैं, बाकी हमने कुछ पता नहीं।
इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है।
यस। अब ये लाइन समझाइए, बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद ने बोला, हिंसा करते हैं, कूटनीति करते हैं, हृदय तुरंत शुद्ध नहीं होता है। बहुत अच्छा बात शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और बता रहे हैं क्यों सनिष्ठ या स्वधर्म का पालन करना जरूरी है, ताकि वह क्रमशः शुद्ध हो जाए। वानप्रस्थ तक जाने के लिए बोला जाता है, ब्राह्मणों को बोला जाता है कि उनके लिए संन्यास अनिवार्य है, क्षत्रिय संन्यास ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, वैश्यों को केवल वानप्रस्थ तक बोला जाता है, शूद्रों को गृहस्थ। नहीं, देखिए संन्यास ले लेंगे तो शासन करेगा उसका बेटा करेगा ना, लेकिन कहने का पॉइंट है कि तुरंत संन्यास नहीं ले सकते, उसका स्वभाव इस प्रकार का है स्वभाव। अब देख सकते हैं ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि बोल रहे थे कि शांत रहो शांत रहो, ना मेरे से नहीं हो सकता, आपके पास सोल्यूशन है तो बताइए, नहीं तो फिर आप जाइए, ऐसा करके है ना। यस। हाँ, बहुत तेज है उनका रहता। यस।
राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक
समझ में आया आपको? कभी कभी क्षत्रिय लोग हिंसा नहीं करते हैं इसलिए कि सामने वाला पक्ष बहुत प्रबल है। जैसे आप लोग जानते हो कि किसको मारा था फाड़ करके भीम ने, क्या नाम था उसका, जरासंध। तो जरासंध से वह सीधे नहीं भिड़ रहे थे, आपको याद हो ना, डिस्कशन चल रहा था कि जरासंध को पहले मारा जाए ना क्या किया जाए। तो यहां बात चल रही थी कि कौन आया था, जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को कैदी किया हुआ था, तो फिर उनका पत्र आया था भगवान कृष्ण के पास, तो सारे जो यदु थे वो चालू हो गए, चलो हम युद्ध करने जाएंगे, उनको बड़ा अच्छा लगता है एक्चुअली, जैसे हम लोग खेलने जाएंगे ऐसा लगता है हम युद्ध करने जाएंगे। तो भगवान पर विचार विमर्श करके कहते हैं नहीं ऐसा सही नहीं है, राजसूय यज्ञ वो कर रहे हैं, उसके बाद उसको भीम के द्वारा मरवा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस टाइम कुछ शांति रखी गई कि नहीं ऐसे अनावश्यक हिंसा जरूरी नहीं है। तो ये कूट डिप्लोमेसी समझते हैं, कूटनीति होती है, लेकिन हमेशा हिंसा को अवॉइड किया जाएगा क्षत्रियों के द्वारा, ऐसा नहीं। यस।
धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है,
इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, आहवेशु मिथोन्यन्यो मिथोन्योन्यम जिघांस तो महिषिता युद्धमान परम शक्त्या स्वर्गम यांत्य परांगमुख। यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सप्तम द्विजय संस्कृतः किल मंत्रस्य तेपि स्वर्गम अवाप्नुवन्। ये हमने इस पे चर्चा कर लिया था, आप पढ़िए।
युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अनंतर वे भी उच्च लोक प्राप्त होती है, जिसकी प्राप्ति यज्ञ आदि यज्ञानी में मारे गए पशुओं को होती है।
अतः स्पष्ट है, यस।
अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना या याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है।
आपने चीज इंटरेस्टिंग देखी, निहित धर्म मतलब उसमें वो अंदर पड़ा हुआ है धर्म, वो जो नियम पालन किए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है हिंसा है, लेकिन उसके अंदर अंदर पड़ा हुआ है धर्म। निहित मतलब उसमें धर्म है, उसको धर्म आप अलग नहीं कर सकते, छुपा हुआ कह सकते हैं, नहीं है अंदर, बाह्य रूप से लग रहा है हिंसा है लेकिन उसमें धर्म है, तो उस धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति का उत्थान होगा। ये बात बढ़िया।
यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है।
अब इसमें फायदा क्या, देखिए पशु का क्या हुआ भाई, दो चीज फायदा, एक कि अगर वो क्रमिक विकास करता तो कितनी बार माँ के गर्भ में बैठना पड़ता, पहली चीज। देखिए ये होता हुआ दिखते नहीं इसलिए हम समझ नहीं पाते, लेकिन हम सिद्धांत तो देख ही रहे हैं। तो कितनी बार बैठना पड़ता उसको, मान लो गधा था, गधे से इंसान बनने में उसको कितना समय लगेगा, वैसे इंसान से गधे बनने में बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन गधे से इंसान बनने में बहुत टाइम लगता है, तो काफी टाइम लगेगा, और कितनी बार भोगना पड़ेगा उसको। तो अब ये अगर वध हो जाता है, वैसे गधे का वध तो नहीं होता यज्ञ में, हमने सुना नहीं लेकिन गलत एग्जाम्पल हो गया, लेकिन घोड़े का या जैसे है तो वध कर दिया जाता है, तो फिर उसके बाद उसको मनुष्य शरीर तुरंत प्राप्त हो जाता है।
जैसे भागवतम के पांचवें स्कंद में प्राचीन बरही का वर्णन आता है, तो उसमें जो है नारद मुनि कहते हैं कि आपने यज्ञ किया और आपने बहुत ज्यादा पशुओं के है, तो वो सारे आपका वेट कर रहे हैं, और आप जब मरोगे तो वो सब आपको दंड देने के लिए मुंह
मारे। अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न समझ में आया आपको, नारद मुनि प्राचीन वर्ष तो बोलते हैं कि आपने इतने सारे पशुओं को मारा है, अब वह सब आपसे बदला लेने के लिए इच्छुक है, तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं यज्ञ में कुछ ना कुछ गलती रही होगी। इतने सारे यज्ञ कर दिए, पृथ्वी भर गई, लेकिन यही हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी।
मुझे लगता है कि अनावश्यक, मतलब जरूरत नहीं, अनावश्यक रूप से कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया।
बहुत सारी बातें हैं, एक तो अनावश्यक रूप से करा, और दूसरा वो एक भक्त थे, तो उस भक्त को एक कर्म कांड में लगना ये उचित नहीं। ये बात प्रभुपाद जी बताते हैं वहां पे प्राचीन वर्षत के केस में, कि भक्त थे इस कारण से बनाता थे, क्योंकि प्राचीन वर्षत प्रश्न करते हैं कि क्या मैं योग्य नहीं था या उनको पता नहीं था, तो नारद भी यही बोले थे कि नहीं उनको पता नहीं था, तो इसका मतलब प्राचीन वर्षत में भक्ति की योग्यता थी लेकिन उनको संपर्क नहीं प्राप्त हुआ। तो यही मैं समरी समझावट है कि इस तरह नारद मुनि ने उनको प्रचारित किया। अब ये तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां से, यहां पे हम सीख रहे हैं कि नरक जाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, हाँ, लेकिन मैं समझता हूं जो उससे कि वो बहुत ज्यादा हो गया था और बहुत अधिक पशु की हिंसा हो रही होगी, जो हम यही जो उससे आपके वक्तव्य से हम स्वीकार करते हैं, और उसमें कुछ गलती भी हो रही होगी, तभी इस प्रकार से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, अन्यथा तो हम समझ नहीं सकते कि गलती होती है। यस।
इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं।
देखिए अब यहाँ से तो स्पष्ट यही कि सिद्धांत के अनुसार अगर ठीक ठीक यज्ञ किया जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो नरक की प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे आप देख सकते हो नृग महाराज तो गाय का दान कर रहे थे और एक छोटी सी मिस्टेक से स्वर्ग की प्राप्ति, सॉरी नरक की प्राप्ति हुई, ये छिपकली का शरीर प्राप्त हो। देखिए सिद्धांत में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि जरा सा मिस्टेक हुआ तो एकदम से फिर गलत विपरीत परिणाम आता है। और इसके विपरीत महाराज बड़ा अच्छा बता रहे थे आपको याद हो, वृंदावन चंद महाराज की, किसी भी परिस्थिति में भक्ति लाभकारी ही होती है, श्रेय के प्राप्त कराने वाली भी होती है। बिल्कुल अज्ञान में हो, बिल्कुल गलत समय में कुछ नहीं बता रहा है, जैसे आप अजामिल के उसमें प्रत्यक्ष देख सकते हो, उसे कुछ पता नहीं था कि किसका नाम उच्चारण कर रहा है, नारायण नारायण बोलने मात्र से उसका उद्धार हो गया। ये बहुत अच्छा बात हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि स्वधर्म है, इसमें कुछ जरा सी भी गलती होती है तो उसको लाभ नहीं होता है पूरी तरह से प्राप्त। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, स्पेशली कर्मकांड के सेक्शन।
स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं।
ये लाइन समझ में आई? भौतिक चेतना में हूँ, स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ ताकि धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध हो। यस।
जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता।
ये प्लीज इस दो लाइन को बढ़िया से समझिए। जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में हो जाता है, होता है तो उसको उपदेश देहात्म बुद्धि के अनुसार दिए जाते हैं। ये समझ में आ रही है बात आपको? बहुत अच्छा उदाहरण महाराज बताते हैं कि नदी है। अब नदी को आपको पार करना है तो आपको नदी के साथ बहना पड़ता है। अगर कोई बोल दे कि तुम भाई जीव हो, आत्मा हो, तो मुझे करना क्या, ये तो बताओ। तो अब शास्त्र बोलता है कि तुम ब्रह्मचारी हो, तुम स्त्री हो, तुम राजा हो, और उसको कर्तव्य बताते हैं। यह भी अविद्या ही है, समझ रहे हैं? लेकिन उस अविद्या में रहते हुए धर्म का जो पालन करते हुए व्यक्ति धीरे धीरे जब आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच जाएगा तब उसके लिए इस नदी के संग बहना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि व्यक्ति नदी को पार कर गया तो नदी को संग बहना कोई जरूरी नहीं, समझ गए ना मेरी बात? लेकिन जब तक आप नदी को पार नहीं किए हैं तब तक आपको बहना पड़ेगा। पहले इसको समझिए मेरी बात को। तो अब हम लोग हैं शरीर की चेतना में, रूढ़ हैं, तो अब मान लीजिए ब्रह्मचारी हैं तो हमें ब्रह्मचारी कर्तव्य पालन करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, ब्रह्मचारी आश्रम में स्त्री का कोई मतलब नहीं, कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं, कोई है ही नहीं। अब नारद मुनि ने कायाद्री को कैसे रखा अपने आश्रम में? अभी चैलेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं कि वह इस देहात्म चेतना से पार हैं, वो मुक्त पुरुष हैं। हाँ,
पतंग ऋषि ने सबरी को रखा था।
अच्छा, हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो लोग देहात्म बुद्धि से पार हैं वह वैदिक सिद्धांत के परे हैं, तो उनका उदाहरण लेकर के हम ऐसा नहीं कर सकते।
जैसे कि गंगा नदी में सुवर्ण स्नान करता है,
हाँ,
तो गंगा नदी अपवित्र नहीं, लेकिन आपकी कटोरी में सुवर्ण ने मुंह मार दिया गंगा, तो आपको अपवित्र हो गए।
वेरी गुड।
वही पूरा सुवर जो है पूरा गंगा नदी में स्नान करता है और वही स्नान करते हो और उसको आप अपवित्र नहीं मानते हो।
हाँ, कहने का अर्थ यही है कि जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में है हम सभी के लिए उसको ऐसी ही शिक्षा दी जाएगी, और जब वह पूरा मुक्त हो जाएगा तब उसके लिए सब नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। इसको भगवान आगे गीता में भी बताएंगे। यस 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 यस।
जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है।
स्पष्ट है? यस।
स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं।
हाँ, क्यों? क्योंकि एकदम जानवर जैसा जीवन से उठ करके अब वह वर्णाश्रम में आया, अब धीरे धीरे उसको आत्मत्व मतलब उत्थान में बढ़ेगा आगे। यस।
वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम
समझ में आ गई अपनों को? और ये बहुत अच्छा है क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस तरह से बहना अच्छा लगता है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वह शूद्र, वैसे ही करे। अगर आप लोग को याद हो 17वें अध्याय में हमने चर्चा करी थी कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है अगर शास्त्र के अनुसार वह उन गुणों को के अनुसार कार्य करता है तो उसके लिए वही दिव्य गुण है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, हमने खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सबके अलग अलग गुण थे ना, ब्राह्मण के बहुत सारे गुण थे, क्षत्रिय के अलग अलग गुण थे, और अपने को समझ करके गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति उसके अनुसार कार्य करे। हाँ जी।
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है।
ये लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जिस अधिकार पे हैं, ये बहुत इंस्पिरेशनल बात है, बहुत प्रैक्टिकल। देखिए, हम जिस अधिकार पे हैं हमारे लिए उसी अधिकार के अनुसार कार्य करना उचित है, न कम न ज्यादा। आप सब लोग 16 माला करते हैं तो आप 16 से 12 पे आओगे तो अच्छा नहीं, लेकिन आप कहो कि 16 से मैं सीधे 64 पे जंप करूंगा वो भी अच्छा नहीं, मैं अगर भक्ति के परिपेक्ष में बोलूं, ये कोई क्षत्रिय है तो उसको क्षत्रिय के कार्य करने अच्छे लगते तो करे, मतलब करेगा ही, अब कहे तुरंत मैं ब्राह्मण के कार्य करूंगा वो सही नहीं, वो वापस गिर के क्षत्रिय के कार्य पे ही आ जाएगा। और एक और बात है कि जिस अधिकार पे हम हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, चाहे भक्ति में कर रहे हो चाहे स्वधर्म में, वो बनाया ऐसा गया है कि आप प्रगति करेंगे। जैसे आप श्रद्धा पे थे तो आपने साधु संग किया, साधु संग कर रहे हैं तो अब वहां से क्या हुआ, अपने आप भजन क्रिया की इच्छा हुई, ठीक। अब वो भजन क्रिया धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति कर रही, ठीक। अब आप जंप नहीं कर सकते कि मुझे कल प्रेम मिल गया, ऐसा नहीं होता है, प्राय नहीं होता है। अब आप अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर करते रहिए भक्ति, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नियमित रूप से करना, तो फिर आप निष्ठा के लेवल पर आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि जिस स्तर पर हम हैं हमें निरुत्साहित ना, मतलब उत्साहित रहते हुए जितना अधिकार है उसे करते हुए फिर धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। हमने बस एक बार रिवाइज कर दे रहे, हमने ये सीखा कि भगवान यहाँ पे स्वधर्म की में निष्ठा उत्पन्न करने के लिए ये बता रहे हैं कि तुम भौतिक इच्छा से भी करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसलिए स्वधर्म को ना त्यागो, और आत्मा के लिए शोक करने की आवश्यकता ऐसे भी नहीं है, शरीर के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।